All pre-start time lights are correct. The ring light is on. Godspeed, John Glenn.
Man, I feel fine.
10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.
ویلیو ریڈیو کے پروگرام فکر انگیز میں شارق علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مصطفیٰ زیدی نے ایک دفعہ کہا تھا، چراغوں کی رونق، ستاروں کی قربت، شبستاں کے اسرار کافی نہیں تھے جو تم نے کسی طاق دل پہ لرستی ہوئی موم بتی کی لو بھی چرا لی۔ مصطفیٰ زیدی نے یہ مصرے اہل فرنگ کی آتش علم و دانش کی تمازت کے زیر اثر کہے تھے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج آپ سے ستاروں کی قربت اور شبستاں کے اسرار کی باتیں کروں، مگر یہ باتیں شاعرانہ الفاظ میں نہیں بلکہ سائنسی حقیقتوں پر مبنی ہوں۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں امریکہ کی ریاست ٹیکسس کے مشہور شہر ہیوسٹن کے نواح میں واقع جانسن اسپیس سینٹر جانا ہوگا، جہاں امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی کے کہے ہوئے لفظوں کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے کہ جو انہوں نے اپولو مشن کو چاند پر بھیجنے سے پہلے اپنی تقریر میں کہے تھے۔ آئیے چلتے ہیں۔
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
ہم فکر انگیز کے سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جانسن اسپیس سینٹر جو کہ ہیوسٹن کے نواح میں واقع ہے، ہم اس اسپیس سینٹر کا دورہ کرنے آئے ہیں اور آپ کو بہت سی دلچسپ معلومات فراہم کریں گے ناسا کی بھرپور سائنسی کوششوں کے حوالے سے، اور اس اسپیس سینٹر نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے ناسا کی خدمات میں وہ بھی، اور ہم مختلف لوگوں سے بھی بات کریں گے تاکہ دلچسپ معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی ہم نے اسپیس شٹل کو غور سے دیکھا، ہمارے اندازے سے ذرا چھوٹی تھی وہ، اور پھر اس بوئنگ طیارے کو بھی کہ جس کے اوپر پگی بیک کر کے اس اسپیس شٹل کو لانچ کیا جاتا ہے، یہ بہت دلچسپ منظر تھا۔ اب ہم سیکیورٹی سے گزر کر مین ایرینا میں داخل ہوئے ہیں، یہاں پر سامنے لکھا ہوا ہے فیسنگ مارس، بہت بڑا سا ڈیکوریٹو قلعہ نما سلسلہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور سیکیورٹی سے ایک ایک کر کے ہم گزر رہے ہیں، اور اب ہم مختلف اسٹالس پر جائیں گے جہاں ہمیں خاصی دلچسپ معلومات فراہم ہوگی۔
got fortunately Bob in front of us. He's a volunteer in the space center.
The first thing I'd like to have you see is go to the tram tour. The tram tour is hour long. It take the red tour. The red tour goes to where the astronauts train and rocket park.
Okay.
Now there is a blue tour that goes to the old mission control. Then when you get back, take in the Starship gallery. President Kennedy makes the announcement of going to the moon. Now, when you get back, then you have the International Space Station, that white module over there, that tells you how astronauts eat, sleep, shower, exercise, and get their day organized.
Well, that would be very interesting.
Oh, it is. It's great.
Sure.
Then, after that, if you can go on the periphery, they brought in quite a few new space artifacts.
Thank you very much, Bob, for
your
guidance.
Where are you guys from?
We are from Pakistan.
Really?
Yes.
So you got to see the wonders.
آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ فکر انگیز کی ٹیم کے ساتھ ضیاء الرحمان صاحب جو کہ ناسا میں ریسرچ سائنٹسٹ ہیں، پاکستانی اوریجن سے تعلق ہے ان کا، اب امریکن سٹیزن ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور مختلف مرحلوں پر یہ ہمیں بہت دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ یہ جو ہم داخل ہوئے ہیں اس اسپیس سینٹر میں، تو فیسنگ مارس کر کے ایک بڑا سا ماڈل بنا ہوا ہے، اور اس میں جیسا کہ آئرن پہ جیسے رسٹ لگ جاتا ہے وہ کچھ اس کلر کی یہ کچھ بنائی ہوئی عمارت ہے، تو ہم ضیاء صاحب سے معلوم کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں دکھایا گیا؟
جی، یہ ایسا ہے کہ کیونکہ مارس کا کلر ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ ریڈش نظر آتا ہے ہمیشہ، کافی عرصے سے پرانے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ بھائی مارس جو ہے وہ ریڈ نظر آتا ہے، تو ریڈ کلر کی وجہ سے مارس کو ریڈ پلانٹ کہا جاتا ہے۔ اب جو لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے آج کل کے زمانے میں، جو ہم نے ناسا کے ذریعے ہم نے جو اپنی معلومات حاصل کی ہیں، جو ہمارے اسپیس شپس اس کے مدار میں گھومتے ہیں، اور اس پہ ہمارا روبوٹک روور بھی لینڈ کر چکے ہیں ایک سے زیادہ، تو اس سے ہم نے جو ریسرچ کی تو ہمیں پتا چلا کہ مارس پر آئرن کی کافی مقدار ہے، اور آئرن جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہوا میں آئرن کو رکھیں تو وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے، اس پہ رس لگ جاتا ہے اور اس کا کلر ریڈش ہو جاتا ہے، تو اسی لیے کیونکہ مارس میں آئرن اور بہت ज्यादा है सतह पर मार्स, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज होकर और रेडिश कलर हो जाता है।
जिया साहब, आप हमें ये बताइए कि नासा बजाय खुद एक बड़ा इदारा मालूम होता है, इसके कितने स्पेस सेंटर्स हैं और ये जो जॉनसन स्पेस सेंटर जो ह्यूस्टन में वाक़ है, ये किन मकासद को हासिल करने के लिए कायम किया गया है और यहाँ किस नौयत का काम होता है?
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एब्रीविएट करता है नासा को, और ये अमेरिकन एजेंसी है स्पेस रिसर्च की, जैसे और बहुत सारे दूसरे मुल्कों में भी उनकी स्पेस रिसर्च एजेंसी है, लेकिन नासा को दुनिया भर में लीड हासिल है क्योंकि ये बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी है और दुनिया भर में अपना सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मकाम रखती है, सबसे ज़्यादा इन्होंने स्पेस में काम किया है, इसलिए हम नासा का नाम बाकी सबके मुकाबले में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, दुनिया भर में जाना जाता है। तो नासा के अमेरिका में तकरीबन 14 यानी कि 14 स्पेस सेंटर्स हैं, जिसमें से 9 तो नासा के अपने स्पेस सेंटर हैं और बाकी उनके जो जिनके साथ वो मिल के काम करते हैं। तो इसमें से एक स्पेस सेंटर ये है जहाँ पर मैं काम करता हूँ यहाँ पर, और आप आज विजिट पर आए हुए हैं आप सब लोग, तो ये है जॉनसन स्पेस सेंटर। स्पेस शिप कंट्रोल सिस्टम है और रिसर्च है, सारी जो स्पेस रिसर्च होती है उसका मेन फोकस जॉनसन स्पेस सेंटर में है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं रॉकेट्स टेस्टिंग और बिल्डिंग वगैरह की, और यहाँ पर सैंपल क्यूरेशन का भी बहुत बड़ा एक सेटअप है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी स्पेस सैंपल्स हमारे पास आते हैं स्पेस से, चाहे वो मून रॉक्स हों, चाहे वो मार्स के मीटियोराइड्स हों, चाहे वो और भी किसी और मिशन के जरिए कलेक्ट किए हुए स्पेस के सैंपल्स हों, वो सारे हमारे सेंटर में आते हैं जॉनसन स्पेस सेंटर में, जहाँ पर हम उसको एक खास एटमॉस्फेयर में प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि ताकि वो सैंपल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहे, और यहीं से पूरी दुनिया भर में जितने भी रिसर्च के इदारे हैं यूनिवर्सिटीज़ के और मुख्तलिफ रिसर्च के इदारे, वहाँ पर हम इसको भेजते हैं उनको जब वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो
अब हम एक छोटे से प्ले एरिया में खड़े हुए हैं जिसका नाम है वॉकिंग ऑन द मार्स, और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की इन्होंने सरफेस फ्लोरिंग बनाई हुई है जिसमें स्पंजेस हैं, मगर इसमें ख़ास बात यह है कि जब अगर आप इस पर वॉक करना चाहें तो आपको ये स्ट्रैप करके कुछ ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं कि उतनी ही ग्रेविटी आपको मैसर हो जैसा कि मार्स पर मैसर है। तो जब आप वॉक करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप एस्ट्रोनॉट हैं और आपकी ग्रेविटी बस उतनी ही ग्रेविटी का सामना है आपको कि जैसा कि आप मार्स पर वॉक करेंगे तो होगी, और उसके बाद आप वॉक कर रहे हैं तो आप जंप करते हैं, बड़ी अजीब सी फीलिंग आपको होती है। बच्चे बड़े शौक से ये एक्टिविटी सर अंजाम दे रहे हैं और बाज़ बड़े लोग भी। हमारे साथ इस वक्त आयजा मौजूद हैं, ये 14 साल की हैं और इन्होंने अभी अभी मार्स वॉक की है, तो हम इनसे मालूम करते हैं कि इन्होंने मार्स वॉक में कैसा महसूस किया।
मार्स वॉक में वो बहुत फन था क्योंकि वो ग्रेविटी को कम करते हैं, और आप जब चलते हैं तो फिर आपको लगता है कि आपकी ग्रेविटी सही नहीं है क्योंकि वो लिफ्ट करता है, तो जब आप वॉक करते हैं तो फिर आपको फर्क पड़ता है।
आपको मज़ा आया उसमें या खौफ महसूस हुआ?
मज़ा आया, खौफ तो नहीं था क्योंकि हम हार्नेस पहने हुए थे, मगर मज़ा बहुत आया।
जिया, आप हमें ये बताइए कि नासा क्या दूसरे सितारों पर या स्पेस में किसी और प्लैनेट पर जिंदगी की तलाश कर रही है, और वो ऐसा कैसे करती है?
कल मजमूई तौर पे दुनिया भर के साइंटिस्ट का जो ख्याल है वो यही है कि ज़रूर होगी और होनी चाहिए, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हमारा जो सूरज है वो हमारा स्टार है, और हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं, उसके बहुत करीब जो प्लैनेट होगा वो बहुत गर्म हो जाएगा, और उससे बहुत ज़्यादा दूर प्लैनेट होगा तो बहुत ठंडा हो जाएगा, तो दोनों जगह ज़िंदगी के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लिहाजा जैसे कि हमारी अर्थ है, हमारे अपने सूरज से एक ख़ास फासले पर है, ना बहुत करीब के बहुत गर्म हो जाए, ना बहुत दूर के बहुत ठंडी हो, लिहाजा इसको हम कहते हैं हैबिटेबल जोन, जहाँ पर ज़िंदगी के आसार मिल सकते हैं। और इसी कैलकुलेशन को रखते हुए सामने नासा जो दुनिया के बाहर जिसको हम एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल कहते हैं टेलीस्कोप्स अब बन गए हैं, जहाँ पर ये हैबिटेबल जोन में मतलब ज़िंदगी के आसार को ढूंढ रहे हैं जो कि दूसरे स्टार्स के अपने सिस्टम के अंदर हो सकते हैं।
जॉनसन स्पेस सेंटर सिर्फ नासा की कहानी नहीं सुनाता बल्कि ये इंसानी अज़्म हिम्मत की कहानी सुनाता है जिसमें हम सब शामिल हैं, माजी में इंसानी नस्ल के वो सारे माहिर फलकियात और साइंसदान जिसमें बहुत से काबिल ज़िक्र मुसलमान साइंसदान भी शामिल हैं जिन्होंने
آسمانوں کو تسخیر کرنے کا خواب دیکھا، اور آج اس خواب کے زیر تحت ہم نے پہلا قدم اٹھایا ہے۔ کائنات وسیع تر ہے، مگر ہمارے خیالات، ہمارے خواب اس سے بھی زیادہ عظیم الشان اور وسیع تر۔